ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवय। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। यदि वह प्रधने श्रद्धा सारम वा क्षुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठत मात्रम मे न चेद ग्राम में सुखे स्प्रहा। यदि वह प्रदने श्रद्धा सारम वा चुल्लका हृदि अग्रे तिष्ठति मात्रम मे न चेद ग्राम सुखे स्प्रहा। शब्द और अर्थ इस प्रकार से हैं। यदि यदि वह तुम सबका प्रधने युद्ध में श्रद्धा विश्वास सारम धैर्य वा अथवा क्षुल्लका हे नीचों हृदय हृदय में अग्रे सामने तिष्ठत जरा ठहरो मात्रम एक क्षण के लिए मैं मेरे न नहीं चेत यदि ग्राम्य सुखे इंद्रिय तृप्ति में स्प्रहा आकांक्षा। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। हे तुक्ष देवो, यदि तुम्हें अपनी वीरता में सचमुच विश्वास है, यदि तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है और यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के कामी नहीं हो तो मेरे समक्ष क्षण भर ठहरो। तात्पर्य इस प्रकार से है। देवताओं को डांटते हुए वृत्तासुर ने ललकारा, अरे देवो, यदि तुम सचमुच वीर हो तो मेरे सामने ठहरो और अपना शौर्य दिखाओ। यदि तुम लड़ना नहीं चाहते, यदि तुम अपने प्राणों से भयभीत हो तो मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह दुष्ट प्रकृति का नहीं हूँ कि ऐसे पुरुषों का वध करूँ जो न तो वीर है और न लड़ना चाहते हैं। यदि तुम्हें अपनी सूरता पे विश्वास है तो मेरे समक्ष ठहरो। ओम अज्ञान तिमरांध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितमेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलम श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथविन्तं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान सगण ललिता श्री विशाखा मान्तिश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवभ्य नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गुरो वामनहिताय च जगतिताय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सर्वप्रथम मैं आप सभी वैष्णव से याचना करता हूँ कि ये जो श्लोक है और इस पे जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं इस पे हम आपस में कुछ चर्चा करें और इसको समझें कि इसका अर्थ क्या है। और सबसे पहले हम श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी ललिता विशाखा कृष्ण बलराम जी और गौर निताई के आंगन में बैठे हैं और इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। इससे पूर्व कल हम लोगों ने श्री महाराज जी के मुखारविंद से इसके पहले की कथा सुनी थी और उस कथा में महाराज जी ने दो विशेष बातों पे बल दिया था कि एक तो हमें अपनी भक्ति को बहुत यशस्वी बनाना चाहिए और इस भक्ति को यशस्वी बनाने में यदि हमारे शरीर भी छूट जाए या शरीर भी त्याग करना पड़े तो हमें कोई उसमें संकोच नहीं होना चाहिए या कोई हमें हानि नहीं होगी। और आज के प्रसंग में है कि यदि वह प्रधने श्रद्धा, इसमें तीन बहुत इम्पॉर्टेंट मुख्य विषय वस्तु है। श्रद्धा पहले एक नंबर पे है, दूसरा है विश्वास और तीसरा है धैर्य और अंत में वृत्तासुर कह रहा है कि मेरे समक्ष क्षण भर ठहरो। समय तो इसमें आप देख रहे हैं कि वृत्तासुर का अर्थ है जो धरती से आकाश तक आवृत है, ये भगवान का भक्त है और इसमें भगवान के प्रति स्वतः दिव्य गुण हैं जिन गुणों की चर्चा यहां पर की गई है। और वृत्तासुर जो है बहुत विशेष, बहुत गहरा एक वाक्य बोल रहा है यहां पर, वो इस प्रकार से है। वृत्तासुर ने इंद्र को इस जगत ने अपराध की याद दिलाते हुए कहा, यदि कोई श्री भगवान विष्णु का भक्त होता है तो उसे विजय ऐश्वर्य तथा मानसिक शांति ये अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। ये वृत्तासुर कह रहा है देवताओं से, यदि कोई भगवान विष्णु का भक्त होता है तो उसे विजय ऐश्वर्य तथा मानसिक शांति, विजय ऐश्वर्य और मानसिक शांति, ये तीन शब्द यहां पर ऐसे हैं जिसमें हर कोई व्यक्ति चाहे वह मेटलिस्टिक भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, भक्त हो या अभक्त हो, सभी के अंदर ये चाहत होती कि मेरे मुझे जो भी कार्य करूं उसमें यशस्वी हूं, विजय मिले, हमारे पास ऐश्वर्य हो और हमें इसके साथ में मानसिक शांति हो। तो ऐसे दिव्य गुण चूंकि वृत्तासुर के अंदर हैं इसलिए वो जो है इसके बल पर जो देवता हैं, देवी देवता हैं, इन देवताओं को ये ललकार रहा है। ललकार रहा है यानी इन्हें चैलेंज कर रहा है। तो इस पूरे प्रकरण में इस तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी हमें ये बताना चाहते हैं कि भक्त को किस तरह से निष्काम भाव होकर के अपने अंदर इन बलों को मजबूत करना चाहिए जिससे जो है हमारे अंदर भी जो हमारा मनोबल है वो बहुत ही मजबूती से हो और हमें जो है हमारे अंदर किसी तरह की कुंठा ना हो, श्रद्धा विश्वास और धैर्य तीन जो बातें यहां पर वृत्तासुर ने बताए हैं इसके ऊपर हम जोर देने का प्रयत्न करेंगे और इससे जो है हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारा इससे क्या संबंध है और हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है। तो मेन चीज है श्रद्धा। पहले हम श्रद्धा को लेते हैं। श्रद्धा यानी कन्विक्शन, आत्मबल को ऊपर उठाने के लिए हमारी श्रद्धा जितनी मजबूत होगी उसी प्रकार से हमारी भक्ति चलेगी। श्रद्धा का विशेष करके श्रद्धा दो प्रकार की होती है, एक स्वभावता होती है, दूसरा बलोत्पादित होती है। बलोत्पादित का मतलब होता है कि जो बाई फोर्स हो यानी कराई जाए। एक श्रद्धा नेचुरल तरीके से यानी स्वतः होती है। स्वतः होने का अर्थ क्या है कि जैसे आप देखते हैं अपने दैनिक जीवन में लोगों से जब मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो कुछ लोगों की अपने आप स्वतः ये इच्छा होती है कि हम मंदिर आएं और यहाँ पर भगवान के दर्शन करें और भक्तों की सेवा करें। इसके लिए उन्हें कभी किसी ने कुछ बताया नहीं, कहा नहीं, पर उनके अंदर पूर्व जन्मों के पूर्व संस्कारों से, उनके माता पिता से या जिससे भी कह लीजिए, उनके पूर्व संस्कार में वो चीज़ ऑलरेडी मौजूद है। बहुत समय अभी कुछ समय के पहले की बात है, मैं एक बार अपने गुरु महाराज के पास गया था और एक प्रश्न मैंने उनसे किया कि महाराज पूरी श्रद्धा के साथ में जो है ये कार्य मैं कर रहा हूँ तो पर इसमें कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परिणाम नहीं हो रहा अच्छा। तो महाराज ने कहा कि यही तो अभ्यास है। तो एक स्पॉन्टेनियस यानी जो श्रद्धा हमारे अंदर ऑलरेडी पूर्व कर्मों से या पूर्व संस्कारों से निहित है उसके आधार पर हम स्वतः से हमारे अंदर में इच्छा होती है कि हम मंदिर में जाएं, भक्तों की सेवा करें और भगवान के दर्शन करें, भक्तों को प्रसाद दें, भक्तों को मदद करें। कुछ लोगों में आप देखते हैं कि ये श्रद्धा, इसके लिए किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो लोग अपने आप स्वयं ये कार्य करते हैं। और एक व्यक्ति को श्रद्धा जागृत करनी पड़ती है, जैसे हमारे जो यहाँ पे जो लोग प्रचार करते हैं उनको इस चीज़ का अनुभव होगा कि जब वो बाहर जाते हैं तो लोगों के पास जा करके उनको भगवद गीता या अपने ग्रंथों को वितरण करते हैं और उनसे ये आग्रह करते हैं कि प्रभु जी ये पुस्तक लीजिए, भगवद गीता लीजिए, ये भागवतम लीजिए, आप पढ़िए। वो कहते हैं ठीक है आप दे दो हमें, लेकिन अभी तो हमारे पास समय नहीं है। तो उस व्यक्ति को श्रद्धा नहीं है, पर ये भक्त जा करके उनसे प्रार्थना करता है कि प्रभु जी आप इसको लीजिए और इसमें आपका उद्धार है। तो ये प्रयास इस प्रकार से है कि जैसे छोटा बच्चा है वो स्कूल नहीं जाना चाहता है, पर उसके जीवन के प्रति माता पिता सतर्क होते हैं और माता पिता कहते हैं कि नहीं तुम स्कूल चलो, स्कूल तो उसको ले जाते हैं और उसको एक थप्पड़ भी लगाना होता है तो लगाते हैं और बोलते हैं कि स्कूल चलो, क्योंकि माता पिता को पता है कि ये बच्चे को आगे चल करके अच्छा व्यक्ति बनना है और ज्ञानवान बनना है, बुद्धिमान बनना है, ऐसी सब उनके अंदर ये धारणा रहती है। उसी प्रकार से भक्त लोग, ये भक्तों की इच्छा होती है कि जो लोग भक्ति में नहीं हैं उनको जो है हम भक्त बनाएं, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं यानी श्रद्धा को वो उसमें उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। श्रद्धा को उसमें उत्पन्न करने का जो प्रयास करते हैं उसको कहते हैं बलात् उत्पादिता। स्वभावता जो हो रही हो तो ठीक है, लेकिन ये स्वभावता जो है इसमें इतना होने के बावजूद भी क्योंकि ये हम लोग भौतिक संसार में रहते हैं और भौतिक संसार की जो प्रकृति है ये प्रकृति की रचना तीन गुणों से हुई है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हम किसी समय जो है बहुत अच्छी भावना में होते हैं, बहुत शुद्ध भावना में होते हैं तो हमारे अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि हम चल करके जो है मंदिर में सेवा करें, भक्तों की सेवा करें। दूसरे पल हम सोचते हैं जब हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव होता है तो हम सोचते हैं कि नहीं छोड़ो, जाने दो, फिर कभी कर लेंगे। फिर वो धीरे धीरे हमारे रजोगुण का प्रभाव होता है, फिर तमोगुण की स्थिति कोई एक ऐसी हमारे सामने आती है कि हम उसको छोड़ दे, उसको टोटली निकाल देते हैं, और फिर किसी न किसी समस्या में पड़ करके हम वहां अपने को उस तरफ चले जाते हैं। यानी माया की जो शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति, वो हमें आकर्षित अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो इस प्रसंग में वृत्तासुर देवताओं को लज्जित कर रहा, देवताओं को जलील कर रहा है, और देवता लोग भयभीत भी हो रहे हैं, लज्जित भी हो रहे हैं, जलील भी हो रहे हैं। सोचिए, ये भक्तों, अभक्तों की बात नहीं हो रही, हम सब भक्त हैं, और हम भक्तों के लिए भी यहाँ पे ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें अपनी भक्ति में किस तरह से शुद्ध होना चाहिए, किस तरह से मजबूत होना चाहिए, जिससे हमारी श्रद्धा बहुत ही मजबूत हो। कि जैसे मैंने अभी तीनों गुणों का प्रभाव बताया, कि इस प्रभाव के अंतर्गत जब हमारे अंदर शुद्ध भावना हो कि नहीं, हमें मंदिर जाना ही है, या मंदिर हमें जाकर के भक्तों की सेवा करनी ही है, या हमें भागवतम की स्टडी करनी ही है, तो जब इसको हम कैसे मजबूत करें, तो इसको हमें अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, यानी अपने आत्मबल को मजबूत करने का मार्ग यहाँ पे बता रहे हैं वृत्तासुर जी। और वो ये कह रहे हैं कि जो है हमें ये चीज हमारी सबसे ज्यादा दृढ़ तभी होगी जब हम भक्तों के संग में होंगे, साधु संग करेंगे, प्रचार कार्य करेंगे, और श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, या भगवद गीता का अध्ययन करेंगे, या प्रभुपाद जी के द्वारा दिए गए जो पुस्तकें हमें मिली हैं उनका अध्ययन करेंगे, और हमें हर वक्त 24 घंटे इस बात का चिंतन मनन करना चाहिए कि हमारे जीवन में गुरु हैं, और गुरु की हमने शरण ग्रहण की हुई है, तो गुरु के माध्यम से हमें ये बल मिलता है। जब तक हमारे ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, भक्तों की कृपा नहीं होगी, साधु की कृपा नहीं होगी, शास्त्र की कृपा नहीं होगी, तब तक हमें ये इसका बल प्राप्त नहीं होगा। हम हमेशा जो है इधर उधर सोचते रहेंगे, डावाडोल, कुछ हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे, लेकिन वो अच्छे विचार तुरंत जो है निकल जाएंगे, वो रुकेंगे नहीं। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जगह जगह पे जो भागवत सप्ताह होता है, लोग वहां जाते हैं, भागवत सुनते हैं, और मैंने देखा कि बहुत समय से 30-30 साल, 40-40 सालों से भागवत सुनते हैं, उसका कुछ लाभ उन्हें जरूर मिलता है, लेकिन हर वक्त भगवान की कृपा, साधु की कृपा, शास्त्र की कृपा, हम भक्त लोग हमेशा एक्यूमुलेट करते रहते हैं कि जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हमारी श्रद्धा उसमें दृढ़ होती है, और यदि कुछ बुरा होता है तो तुरंत जो है हमारी वो श्रद्धा बहुत ही नाजुक तरीके से बहुत कमजोर होने लगती है। अभी एक उदाहरण स्वरूप मैं इस बात को समझाना चाहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले ही एक भक्त मेरे पास, बहुत अच्छे भक्त हैं, हमेशा ऐसे कुछ कुछ चर्चा लोगों से जब मिलते हैं तो होती रहती है। तो भक्त कह रहे थे कि प्रभु जी, मैं जो है मंदिर तो आता हूं, लेकिन आप देखिए कि जो श्रद्धा की आप बात कर रहे हैं, श्रद्धा है, सब कुछ है, मैं कर रहा हूं, लेकिन ये भक्त जो है मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है कि इससे मेरी तो श्रद्धा बिल्कुल नहीं है, कि ये सब हम लोग जो करते हैं इसमें क्या, जब इसमें इतना नुकसान होता है और इतना सब कुछ है। बहुत बार ऐसे लोग बिजनेसमैन वगैरह भी इस टाइप की बात सोचते हैं कि कुछ दिन वो आपके कहने पर करने तो लगते हैं, लेकिन जब उनका कुछ रुकावट आती है, कुछ समस्या आती है, तो तुरंत वो श्रद्धा उनकी टूट जाती है। तो हमारे भक्तों में भी जब हमारे साथ में कोई प्रोवोकेटिव सिचुएशन, यानी कोई विपरीत परिस्थिति होती है किसी भी प्रकार की, तो तुरंत हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है। तब हमें लगता है कि क्या जो हम भक्ति कर रहे हैं सच में इसमें भगवान की कृपा मिलती है, शास्त्र की कृपा मिलती है, साधु सेवा की कृपा मिलती है। तो अभी जो भागवत चल रही है यहाँ पे, उस कथा में मैंने सुना, प्रभु जी बता रहे थे कि हमारी श्रद्धा बहुत मजबूत होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हमारी श्रद्धा डगमगानी नहीं चाहिए। तो उसको जो है मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा उपाय हमें जो वीपन्स है हमारे गुरु ने दिया है या हमें संस्था के माध्यम से मिला है, वो है भगवान के नाम का जप, जो महामंत्र हम लोग जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के द्वारा जो कृपा हमें प्राप्त होती है उसका अनुभव सच में जो है बहुत ही विचित्र है। इसका हमें बहुत गहराई से प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हमारी ये श्रद्धा दृढ़ हो और ये श्रद्धा हमेशा के लिए हमारे हृदय में मजबूती से रहे। तो इसी के लिए हमें सारा ये शास्त्र दिया है, गुरु महाराज दिए हैं, इतना सुंदर मंदिर हमें दिया गया है और इस संस्था में हम रहते हैं और डेली हम इसका अभ्यास करते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी जल्दी ही मैंने हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज की इस श्लोक के ऊपर व्याख्यान सुना था। तो महाराज उसमें कह रहे थे कि हमें जो है कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा उद्धृत रहना चाहिए। कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा उद्धृत रहने का अर्थ क्या है? कृष्ण की सेवा के लिए हम जो है, जैसे हमें कोई सेवा अगर दी गई है यहां पर, भगवान के लिए भोग बनाना है या भगवान की आरती करनी है, विग्रहों की सेवा करनी है, तो हमें उसमें बहुत उत्साह से भाग लेना चाहिए। और जब आप उत्साहपूर्वक ये कार्य करेंगे, हृदय पूर्वक करेंगे, तो आपको भगवान की कृपा मिलेगी। और हो सकता हो ये कृपा मिलने में थोड़ा समय लगे, जैसे यहां पे एक शब्द आया है धैर्य। तो हमें अपने श्रद्धा को, अपने धैर्य को बहुत मजबूती से बनाए रखना चाहिए और इसमें और जल्दी प्रगति करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि इसमें, इस कार्य में हमारी और तेजी से प्रगति हो और ये कृपा हमें, इसका अनुभव हो और धैर्य आपका छूटने वाला हो, तो बहुत व्यक्तिगत मैं अपना अनुभव बताना चाहूंगा, अभी समय नहीं हो तो हम शेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करके देखिए ये कार्य। किसी शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाइए। शुद्ध भक्त की सेवा बहुत तरह से हो सकती है, मन से भी हो सकती है, अपने कर्म से भी हो सकती है और वचन से भी हो सकती है, और यहां तक कि किसी शुद्ध भक्त को क्षण मात्र सिर्फ प्रणाम करने से भी हो सकती है ये कृपा, और निश्चित रूप से हो सकती है। इससे आपका धैर्य कभी छूटेगा नहीं, इससे आपकी श्रद्धा कभी भी कमजोर नहीं होगी। जैसे ही आप बहुत साधारण साधारण मैं बातों पर चर्चा कर रहा हूं, और ये आप करके देखिए अपने जीवन में। इसके बाद में हिज होलीनेस देवामृत स्वामी एक बार इंग्लिश क्लास में कह रहे थे वो कि प्रभुपाद जी ने एक्चुअली ये कहा है कि जो क्षण, यहां पे क्षण शब्द यूज किया, समय, वृत्तासुर कह रहा है देवताओं से कि एक क्षण के लिए मेरे सामने रुको। यानी वृत्तासुर चूंकि भगवान का भक्त है वो, और देवताओं के आत्मबल को ऊपर उठाना चाह रहा है, और इसी माध्यम से हम अपनी साधना भक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, ये इसका इस तात्पर्य से हमारा संबंध है। इसलिए गहराई से इस बात को सुनिए कि हमें अभी, मैं कल ही जो है भागवत महाविद्यालय में गया था और दीवाल के ऊपर बहुत अच्छा एक सेंटेंस लिखा था, वो सेंटेंस इस प्रकार से है, भक्त का एक क्षण और अन्न का एक कण। यानी भक्त का एक क्षण, यानी भक्त का एक पल, एक समय, और अन्न का एक कण, ये दो चीज को अपने जीवन में आप प्रायोरिटी दे करके अपनी साधना भक्ति को मजबूत करते हैं। यानी कभी एक अन्न को आप रिस्पेक्ट करना समझिए, और हम लोगों को करना चाहिए कि एक अन्न जो है वो कृष्ण द्वारा प्रदत्त चीज है। एक चावल का दाना किसी फैक्ट्री में नहीं बनता है, किसी टेक्नोलॉजी से आज भी नहीं बनता है, वो भगवान की कृपा से उस प्राकृतिक नेचुरल प्रोसेस में जो भगवान ने व्यवस्था की उसके अनुसार ही होता है। तो उस एक चावल के दाने को हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये तुम्हारा नहीं है, हमारा नहीं है, ये भगवान का है, और इसे भोग लगा के खाना चाहिए, इसका दुरुपयोग कभी नहीं होना चाहिए। और एक चावल के दाने से हम लोग देखो, कभी हम लोग जगन्नाथपुरी से चावल की जो छोटी वो ले आते हैं और एकादशी को व्रत छोड़ते हैं उससे, तो उस एक चावल में भी यदि हमें इतना ज्ञान हो और इतना समझ हो तो उस चावल के एक दाने से भी हमारी जो मानसिक स्थिति, हमारी जो श्रद्धा है, हम अपनी श्रद्धा को बहुत मजबूत बनाए रख सकते हैं सिर्फ इतना ध्यान मात्र से। तो देवामृत स्वामी क्या बता रहे हैं समय क्षण के विषय में, टाइम इज इम्पर्सनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कृष्णा। समय जो है यह भगवान का प्रतीक है, जल है यह भगवान का प्रतीक है, अन्न है यह भगवान का प्रतीक है। तो इन सब चीजों को एक वैष्णव होने के नाते, वैष्णव शब्द का अर्थ क्या है, हम अपने को वैष्णव कहते हैं। कोई यदि आपसे पूछे कि वो हु इज वैष्णव, तो एक शब्दों में और एक लाइन में आप इसकी परिभाषा सामने वाले को बोल सकते हैं। वैष्णव का अर्थ होता है जो विष्णु की पूजा करता हो। इसमें सारी बातें आ गई, और विष्णु अर्थात कृष्ण, और हम लोग कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। और कौन से कृष्ण की, जो ईश्वर परम कृष्ण है उनकी पूजा करते हैं हम। तो हम इस तरह से कृपा पात्र बनने के लिए मैंने बताया कि इंटेंस आपको अगर इसका लाभ चाहिए तो हमें जो है किसी जो प्रगतिशील भक्त है, जो शुद्ध भक्त है, उसके चरण में उसकी सेवा करने से, उसको प्रणाम करने से, उसकी किसी भी प्रकार से यदि आप सेवा करते हैं तो आपको इसकी कृपा तुरंत मिल सकती है और आपकी श्रद्धा इस तरह से मजबूत हो सकती है। इस प्रकार हम लोगों को साधना भक्ति जो हमारे वैष्णव सिद्धांत का प्रमुख अंग है, जिसमें महामंत्र सबसे इंपॉर्टेंट है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सबसे बड़ा जो है हमारे पास में शस्त्र है वो प्रभुपाद जी ने हमें ये महामंत्र देके किया है कि चैतन्य महापुरुष कृपा से हम इसको गहराई से लें। और 16 माला जो हमें बताया गया उसको बहुत गहराई से, बहुत स्थित प्रज्ञ होकर के करना चाहिए। स्थित प्रज्ञ होने का मतलब है कि एक निष्ठ होकर ध्यान पूर्वक हमें जप करना चाहिए, और इस जप से ही सिद्धि बता रहे हैं कि हमें कृपा मिल सकती है। शिला प्रभुपाद जी की बायोग्राफी में प्रभुपाद जी ने स्वयं बताया है कि इस महामंत्र को, इस कृपा को प्राप्त करने के लिए उनको श्री श्री राधा दामोदर जी मंदिर में बहुत साल लगे, कम से कम 12 साल लगे। और उन 12 सालों में प्रभुपाद जी ने इस कृपा का आस्वादन करके एक साल के अंदर 108 मंदिर पूरे वर्ल्ड में स्थापित कर दिया, और जिससे सारे भक्तों को इसका लाभ मिल रहा है। तो कृपा जो है आपको एक क्षण में भी मिल सकती है, और हो सकता हो इस पूरे जीवन में नहीं मिले, फिर भी भक्त होने के नाते हमें ये बात अच्छी तरह से समझना चाहिए कि यहां पे भगवान बॉन्ड हैं। संकल्प भगवान ने लिया है कि हम ये कृपा देंगे ही देंगे। किसको देंगे? जिसने एक बार भगवान का नाम लिया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कृपा का देखिए, हम लोग कुछ साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल कोई भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के बाद जब कोई हमारे साथ में कोई अनहोनी घटना हो जाती है तो तुरंत हमारी श्रद्धा डगमगाने लगती है, और हम बहुत, हमारे दिमाग में उथल पुथल होने लगता है, और हम तमाम लोगों से पूछते हैं कि अब ये कैसे, ये कैसे, इतना हमने इतना समय ये किया, ऐसे किया, आप कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे दो बहुत ज्वलंत उदाहरण हम ले सकते हैं। छोटा हरिदास का एक उदाहरण हम यहाँ लेते हैं कि छोटा हरिदास जो है सिंपल चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में से एक था, और वो जो है भगवान के कहने पर, चैतन्य महाप्रभु के कहने पर भिक्षाटन के लिए गया हो, और उसका उससे सिर्फ उससे एक्चुअली ये गलती नहीं हुई थी, लेकिन भक्ति के मार्ग में चलते हुए उसने एक स्त्री से जो है कुछ अन्न मांग के ले आया था। लेकिन जो है यहां पर चैतन्य महाप्रभु इससे इतने नाराज हो गए कि जैसे हम लोग एक फ्लाइंग शब्द में कभी कभी हम टेम्पर में आते हैं तो भक्तों बोल देते हैं, किसी हम आपस में अपने घर परिवार में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, या इवन माता अपने पुत्र को या पिता अपने पुत्र को या पुत्र अपने पिता को, जा जा चल तू मर जा यहां से, भाग जा यहां से। तो भक्तों आजकल बड़े दुख की अफसोस की बात है कि ये कलयुग चल रहा है और इस कलयुग में हमारे शब्दों का और हमारी बात का इतना बल नहीं है, मजबूती नहीं है हमारे शब्दों में। लेकिन एक समय ऐसा था जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी थे, राजा दशरथ थे, ये लोग अपने शब्द के लिए अपना प्राण छोड़ देते थे। एक शब्द जो मुंह से निकल गया उस प्राण को, उस शब्द को कायम रखने के लिए अगर उन्हें प्राण भी छोड़ना है तो छोड़ देते थे। तो यहां पे छोटा हरिदास का जो प्रसंग मैं बता रहा था कि जब भगवान ने ऐसा कहा तो हरिदास ने जाकर के अपना शरीर त्याग दिया कि तुमने एक स्त्री के हाथ से कैसे ये भोजन, ये सामग्री क्यों ले आई, त्याग दिया उसने। और अभी परसों प्रभु जी एक हिजोली ने राधा गोविंद महाराज की विषय में बता रहे थे, जो 30 साल पहले की घटना थी, इसी से मिलता जुलता एक प्रसंग मुकुंद मुकुंद करके एक जो चैतन्य महाप्रभु का पार्षद था, उसको भगवान के श्रीवास आंगन में बहुत इच्छा थी एक बार कि मैं भी जाकर के भगवान का नृत्य देखूं, कीर्तन देखूं जो रात को होता था श्रीवास ठाकुर के आंगन में। तो वहां पर जो है वो उसकी बहुत इच्छा थी और एक दिन वो कुछ भक्तों से बातचीत करके और छुप करके वो उस भाग में चला गया, उस रात वहां पे भगवान को देखने के लिए चला गया। लेकिन भगवान को पता चल, चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण थे, उनको पता चल गया कि कोई ऐसा व्यक्ति आया है। तो मुकुंद को उन्होंने बुलाया और मुकुंद को बुला करके मुकुंद को बोला कि तुमने मेरे जानकारी के बिना मेरे मेरी मेरे इसमें शामिल हुए, ये तुमने अपराध किया है मुकुंद, मैं तुम्हें इसका दंड देता हूं, 10,000 साल तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, 10,000 साल तक तुम मेरे पास नहीं आओगे। और इतना कर कर मुकुंद नाचने लग गया। तो सारे भक्तों ने पूछा, अरे तुम्हें इतनी बड़ी सजा मिली है, 10,000 साल तक भगवान तुम्हें दर्शन ही नहीं देंगे, तुम नाचने लग गए। तो उसने सबको क्या कहा कि नहीं, ये हमें जो है भगवान ने कंफर्म तो किया है कि 10,000 साल बाद मुझे मिलेंगे। ऐसे तमाम भक्तों की कथा है, सबरी का देख लीजिए, ऐसे तमाम आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो उसमें सब सारे वर्णन इस तरह से मिलेंगे। तो हम लोगों को भक्तों को अच्छी तरह से ये ध्यान होना चाहिए कि हम लोग निश्चित रूप से 100% भगवान की कृपा पात्र हैं। ये कृपा आप जिस तरह से इच्छा करेंगे, जिस तरह से डिजायर करेंगे, आपको मिलेगी ही मिलेगी, भले आज मिले, कल मिले, अगले जन्म में मिले, लेकिन मिलना ध्रुव है, मिलना निश्चित है। तो इसलिए कभी भी अपने मन को, अपने आत्मबल को नीचे न गिरने दें और भगवान के नाम को बहुत गहराई से जप करते रहें। और इस विषय में चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं थोड़े से श्लोकों के माध्यम से सुनाना चाहूंगा। ये मध्य लीला 20 और 39, जिसमें प्रसंग है श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा। तो इन श्लोकों, इन व्याख्यान को सुनकर के चैतन्य चरितामृत के, आपको भी अपने साधना भक्ति में और अपने आत्मबल को मजबूत करने के लिए और धैर्य रखने के लिए, अपनी श्रद्धा को मजबूत करने के लिए आपको थोड़ी सी प्रकाश मिलेगा। वो आप सुनिए इस चीज को कैसे बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहा नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। जहां कहीं सूर्य प्रकाश है वहीं अंधकार, वहां अंधकार नहीं हो सकता। कृष्ण मौनामृत अंगीकार करते ही मोह का अंधकार तुरंत विलीन हो जाता है। यानी जैसे ही आप कृष्ण भक्ति एक्सेप्ट करते हैं, 4 नियम का पालन, 16 माला का जप करते हैं, तो हमारे अंदर से ये हमारे अंधकार जो है, यानी जो निगेटिव से, वो खत्म हो जाते हैं। इसका हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। फिर अगले इस श्लोक में बता रहे हैं, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लौ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्रों का निर्णय है कि शुद्ध भक्त के साथ क्षण भर की संगति से ही मनुष्य की सारी सफलता प्राप्त कर सकता है। आगे भगवान कह रहे हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास का जो इसी श्लोक में आ रहा है, श्रद्धा, श्रद्धा पे अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसको सुनिए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति करने पर मनुष्य स्वतः सारे गौण कर्म संपन्न कर लेता है, और ऐसा सुदृढ़ निश्चय जो भक्ति निर्वाह के अनुकूल है श्रद्धा कहलाता है। आगे बता रहे हैं, असत्संग त्याग ये वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक साधु कृष्ण भक्त आर। वैष्णव को सामान्य लोगों की संगति से बचना चाहिए। सामान्य लोग बुरी तरह से भौतिकता में, विशेषतया स्त्रियों में आसक्त रहते हैं। वैष्णव को उन लोगों की भी संगति से बचना चाहिए जो कृष्ण के भक्त नहीं है। इसका खास ध्यान रखना चाहिए यदि हम अपनी भक्ति को, अपने श्रद्धा को मजबूत रखना चाहते हैं तो। आगे भगवान कह रहे हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नाय, श्रवणादि शुद्ध चित्त करे उदय। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम जीवों के हृदयों में, हृदय में नित्य स्थापित रहता है। यह ऐसी वस्तु नहीं है जिसे किसी अन्य स्रोत से प्राप्त किया जाए। जब श्रवण तथा कीर्तन से हृदय शुद्ध हो जाता है तो जीव स्वभावतः जागृत हो उठता है। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरावास श्री मूर्ति रस हृदय सेवन। मनुष्य को चाहिए कि भक्त की संगति करे, भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे, श्रीमद् भागवत सुने, मथुरा में वास करे तथा श्रद्धापूर्वक सम्मान पूर्वक अर्चा विग्रह की पूजा करे। देखिए पांच चीजें कितनी इंपॉर्टेंट चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं सनातन गोस्वामी से। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं, परम भाग्यशाली हैं कि हमें आज इस धाम के अंदर, इस प्रांगण में हमें ये पांचों चीजें मौजूद हैं यहाँ, तो हमें इसका पूरा लाभ उठाना चाहिए। सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माए यही पांचे अल्पसंग। भक्ति की ये पांच अंग सर्वश्रेष्ठ हैं। यदि इन पांचों को रंच मात्र भी, थोड़ा भी संपन्न किया जाए तो कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, ऐसा चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं सनातन गोस्वामी को। और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम इस प्रकार से ये पांचों चीजों को अपने जीवन में लेकर के यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमें भी ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं किसी भी तरह से। और इस बात का पूरा हमें भरोसा होना चाहिए कि जैसे मैं ये दो उदाहरण बताए कि कृपा मिलना निश्चित है। छोटा हरिदास ने प्राण त्याग दिया, सीधा भगवान के धाम गया, शरीर छोड़ के भी कृपा पात्र बन गया। मुकुंद को पता चला कि मुझे 10,000 साल बाद भी भगवान की कृपा मिलेगी, ये धैर्य है जो यहां शब्द आया, धैर्य शब्द। अंतःस्थल में वृत्तासुर कर रहा है, तुम्हारे अंतःस्थल में धैर्य है, यदि तुम इंद्रिय तृप्ति के कामी नहीं हो तो, यानी सेंस ग्रेटिफिकेशन, जो इंद्रिय भौतिक वस्तुएं हैं उससे हमें बचना चाहिए। यहां पर गुरु महाराज बताते हैं, हिज होलीनेस राधाना स्वामी महाराज, वैष्णव को हमेशा प्रीचिंग में, प्रचार कार्य में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए, और बहुत सुंदर है कि यहां पे कंपेरेटिव तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि एक कर्मी व्यक्ति जो व्यापारी है, बिजनेसमैन है, कभी कभी आप देखते होंगे कि कितना भी स्थिति मार्केट की हो, मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है, सुनार है, और सोने का रेट जो है कितना भी डाउन हो जाए, मान लीजिए अभी 40,000 रुपए और आज सोना 10,000 रुपए आ जाए, तो ऐसा नहीं कि वो बर्बाद हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा, फिर भी वो इतना मेहनत करेगा। और आज देखते हैं कि आप बहुत सारे ऐसे लोगों का एग्जाम्पल आपने सुना है, देखा भी है, महसूस भी किया अपने जीवन में, कि जो बिजनेसमैन होता है वो इतना अटैच होता है अपने बिजनेस से कि हर परिस्थिति में चाहे वह कुछ भी हो, उसको प्राण भी त्याग देना पड़े तो भी वो अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए वो सब कुछ सेक्रीफाइस, सब कुछ दांव पे लगा देता है। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट में स्टेबल होना है। उसी प्रकार से भक्तों को हमारा गहना क्या है, हम लोग भी उस सोनार से कम नहीं है, उस सोनार से कई गुना महत्वपूर्ण है भगवान की डायरी में। और हमें जो है ये जो चार नियम का पालन और 16 माला का जप, सिर्फ इसको करने के लिए, और इसमें जो पांच अंग विशेष करके बताए गए हैं, धाम में वास हम कर रहे हैं, साधुओं की सेवा हमें प्राप्त है, यहां पर भगवान की अर्चा विग्रहों की सेवा प्राप्त है हमें, इसको हम अगर गहराई से, भले वो छोटी से छोटी भी सेवा हो, लेकिन हृदय पूर्वक यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से इस पूरे ब्रह्मांड में 14 लोकों के अंदर कितना भी उथल पुथल हो जाए, किसी भी प्रकार का प्रलय अगर आ जाए तो भी आपकी भक्ति नष्ट नहीं होगी, क्योंकि उसका जो प्रोटेक्शन है, उसका जो संरक्षण है, वो भगवान के द्वारा हो रहा है। और श्रीमद् भागवत के 10 विषय वस्तु में जो ये छठा स्कंध है, ये पोषणम है। पोषणम यानी संरक्षण। संरक्षण का अर्थ है कि भगवान उसको विशेष संरक्षण, उन भक्तों को विशेष संरक्षण दिए हैं जो ये पांच भक्ति के पांच अंगों को अपने जीवन में उतार करके सेवा कर रहे हैं और साधना भक्ति कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब इस व्याख्यान को विराम देता हूं और आप सभी से प्रार्थना करूंगा कि आप हमें आशीर्वाद दें कि इस अध्ययन को और गहराई से हम लोग अनुभव करें, समझें और लोगों को प्रचार करें।